نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. زاد الخير کا ڈے فور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے شروع کرتے ہیں، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعی ہمارے لیے زاد الخیر بنا دے. زاد الخیر کیا ہے؟ اگر لفظوں کو دیکھ لیجئے تو زاد الخیر خیر کا زاد راہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا زاد التقوی. زاد کہتے ہیں وہ سامان سفر جو مسافر ساتھ لے کے چلتا ہے، تو خیر کا سفر، نیکیوں کا سامان لے کے چلتے ہیں. اور یہ ہمارا نور القرآن کی طرف سے آفر کیا ہوا وہ کورس ہے جو پچھلے کئی سال سے ہر سال مختلف اینگل سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم رمضان کے لیے جسمانی، روحانی اور قلبی طور پر تیار ہوتے ہیں. اسی سے ہمیں محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے. تو اس سال جو چیز ابھی ہم کریں گے، اس میں پہلے ہم رمضان کیسے گزارے، رمضان ایک ایمان والے کہیں رمضان کیسے ہوتا ہے، بلیورز رمضان، اس پہ بات کریں گے. اور آج ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی اس سے کوئی مفر ہے، یعنی کسی کو اس میں انٹرسٹ نہ ہو. اور وہ کیا ہے کہ رمضان ود فیملی، رمضان منتھ آف فیتھ فیملی، بلیسنگز کا مہینہ ہے. آج انشاءاللہ بہت پریکٹیکل باتیں ہوں گی، سمپل باتیں ہوں گی، لیکن ایسی چیزیں جس کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ہے. رمضان کو کیسے پلان کریں کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم دوسرا ٹاپک کریں گے جو رسک کی کنجیوں کے نام پہ ہم کر رہے ہیں، رسک مینجمنٹ. غیب سے رسک دینے والا موجود ہے جس نے حقیقت میں ہر بندے کے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو آئیے پہلے شروع کرتے ہیں رمضان ود فیملی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رمضان میں گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر کو جگہ سکون بنایا. اردو میں گھر کو مسکن بھی کہتے ہیں اور عربی زبان میں بیت کہتے ہیں. مسکن کہہ لیجئے تو سکنہ سے سکون کی جگہ، ٹھہر جاتا ہے بندہ گھر میں آ کے. سارا دن ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا ہے، اور جب رات کو گھر میں آتا ہے تو کہتے ہیں آپ بس میں نے کہیں نہیں جانا. اور خاص طور پہ وہ برادرز، مرد حضرات جو سارا دن رزق کے معاش کے پیچھے جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رات کو گھر میں آتے ہیں تو ان کو ایک سکون ملتا ہے. بیت کیوں کہتے ہیں گھر کو؟ اس لیے کہ بات یبی تو بیتن، رات گزارنے کو کہتے ہیں. یو بی یتون، رات کو باتیں کرنے کو کہتے ہیں. سورۃ نساء میں ایک پورا واقعہ ہے جس میں یہ لفظ چند بار استعمال ہوا ہے. تو گھر کو بیت کہنے کی وجہ کیا ہے کہ جب بندہ گھر میں آتا ہے تو پھر وہاں رات گزارتا ہے، یعنی کہیں بھی چلا جائے لیکن رات تو وہ گھر میں ہی گزارے گا. تو یہ چیز ہے. تو گھر حقیقت میں سکون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گھروں کی بہت زیادہ بات کی ہے، اور اس کے فزیکل کیسا ہوگا، حتیٰ کہ سورۃ نحل میں تو خیموں والے گھروں کی بھی بات ہے، ہلکے پھلکے ٹینٹس دیکھ کر اٹھا کر پھرتے ہو، یعنی بدوؤں کے گھروں کی بھی بات کی ہے اللہ نے، اور ہم جیسے اللہ کی نعمتوں اور آسائشوں میں رہنے والوں کے گھروں کی بھی بات کی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرے لیے میرا گھر باعث سکون ہے؟ یہ ایک سوال ہے، خود سے لکھے. اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے ہے. کیونکہ اگر آپ کے گھر میں آپ کو سکون نہیں ملے گا تو یاد رکھیے کہ کہیں بھی نہیں ملے گا. گھر کا سکون بہت بڑی نعمت ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والوں میں سے اس وقت بھی جو لوگ گھریلو کسی پریشانی میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو سکون عطا فرمائے. اور یاد رکھیے کہ سکون کہیں باہر سے آئی بھی چیز نہیں ہے، یہ آپ کو اپنے اندر سے لانا پڑتا ہے. اور اس سکون کی خاطر انسان سارا دن دنیا میں دھکے کھاتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں گھروں میں جمع کر بھی لی جائیں تو سکون کا وعدہ نہیں ہے. لکڑیاں سکون نہیں دیتی، لوہا سکون نہیں دیتا. اسی لیے پھر اگر ہم اپنے گھروں کو بہت سارے فرنیچر سے بھر لیں، یا ہم اپنے گھروں کے اندر بہت ساری مشینیں بھر لیں، सुकून नहीं आएगा, और सुकून देने वाली चीज बीवी है और सुकून लेने वाली चीज मर्द है। दोनों का बहुत गहरा रोल है घर के अंदर। आप कहते बच्चे घर में सुकून ही नहीं है, बच्चे परेशान कर रहे, बच्चे शोर कर रहे, बच्चे, तो जरा वो वक्त सोचिए कि जब बच्चे है ही नहीं थे और आपने दुआएं मांग मांग के लिए। क्या ऐसा नहीं होता कि हम में से कई लोग अपने ही बच्चों के शोर से परेशान होते हैं? तो उसे एक बहन का तजुर्बा याद कर लीजिए कि जिसके बच्चे बड़े होके अपनी अपनी पढ़ाइयों लिखाइयों के सिलसिले में इधर से उधर चले गए और वो तनहा बैठे मियाँ बीवी घर में, उस वक्त को याद करते थे कि जब बच्चे थे, शोर होता था, चीज़ें बिखरी रहती थी और एक जिंदगी का एहसास होता था। लेकिन अब तो बच्चे हैं नहीं, तो याद रखिए ये बच्चों का शोर भी नेमत है, लेकिन ये बच्चे असल में शोर क्यों करते हैं उसकी वजह यह है कि हम इनकी सही तरबियत नहीं कर चुके होते। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हम समझेंगे वो क्या है कि हमने इस रमज़ान को ख़ास तौर पे अपनी और अपने बच्चों की तरबियत का महीना बनाना है। और तरबियत होती है बच्चों को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक पालने से और फिर उसके बाद उनको अल्लाह के कवानीन को उनके ऊपर लागू करने पे। और ये बहुत सब्र आजमा काम है, ये आसान काम नहीं है। खुद करना ही मुश्किल था, अपने ही नफ्स के घोड़े को दबाना कितना मुश्किल है, और कहाँ फिर किसी दूसरे को समझाना जो आपसे उम्र में कम अज कम 15-20 साल छोटा है। कम अज कम बच्चे और माँ की उम्र में इतना फर्क तो होता है ना। तो इसके लिए नोट कीजिए, इस सब्र का अल्लाह ताला ने अजर भी लिखा है। सूरह तौहा की आयत 132 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वामुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। दूसरी बात, तीसरी बात, ला नसअलुक रिज़्क़ा। चौथी बात, नहनु नरज़ुक। और पांचवी बात, वला अक़िबतु लित्तक़्वा। ज़रा से इस आयत पे आज गौर करते हैं, जैसे कल हमने दुआ की आयत पे गौर किया था। अल्लाह सुबहाना ताला सूरत तौहा की आयत 132 में फरमाते हैं, अपने अहलो याल को नमाज की तलकीन करो और खुद भी इसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं, और इंजाम की भलाई तकवा ही के लिए है। आप अभी तो सिर्फ इस आयत को देखिए, लेकिन मेरी बात पे थोड़ा सा यकीन करते हुए कि कुरान पाक में ये आयत कहाँ आई है। सूरत तौहा में इससे ऊपर की अगर आयात को हम देखें तो अल्लाह सुबहाना ताला ने कुछ ऐसे लोगों का तذکرہ किया कि कल तक तो वो थे लेकिन आज नहीं है, और हलाक शुदा बस्तियां बनकर दुनिया में खंडरात की सूरत में आ चुके। अल्लाह ने उनको नेमतें दी, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जब ना जिए और फिर फसबिर अला मा यकूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूई शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, कि जब लोगों की तरफ से दीन पे अमल करने में मुश्किलात आती हैं, एक तरफ इबादत मुश्किल कर दी जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आयत 131 जो बिल्कुल इससे ऊपर की आयत है, वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअ्ना बिही अज़्वाजम मिन्हुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी, और निगाह उठाकर भी न देखिए दुनिया की जिंदगी की इस शान व शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने इन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ के हलाल ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। अपने नबी को अल्लाह ताला ने इस आयत में बुनियाद बनाकर आपको मुझे एक सबक दिया, और वो क्या है कि बस दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए दुनिया का मालो मता छोड़ जाएं, उनको खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद दें, गैजेट्स भी हों, मशीनें भी हों, दुनिया की हर नेमत दिला दें तो वो बहुत खुश रहेंगे। नहीं, अल्लाह ने पैगाम दे दिया कि निगाह उठाकर भी ना देखो, डोंट लुक एट देम, हसरत ना हो, तुम्हारी आंखें लंबी ना हो जाए, हाय फुलां की गाड़ी देखी, फुलां के कपड़े देखे। और याद रखिए कि हमारे बच्चे खामोशी से हमारी ये सारी हरकतें नोट करते हैं। जब माँ और बाप दोनों की जिंदगी में दुनिया की अहमियत आखिरत की अहमियत से ज्यादा हो जाती है तो वो दुनिया के मालो असबाब आजमाइश बन जाते हैं। तो ये सब कुछ से अपनी और अपने बच्चों की तवज्जो हटाने के लिए क्या करो, वा मुराहलक बिस्सलाह। नोट कीजिएगा। अल्लाह सुब्हान तआला की बहुत ही प्यारी गाइडलाइन है आपके मेरे लिए। क्या कीजिए? वामुर अहलक बिस्सला, वामुर अमर से, अमर या मुरु, सीगाए अमर आपने सुना होगा। उर्दू में एक लफ्ज बोलते हैं आप अमीर। अब हमारे यहाँ तो अमीर जो है ना वो वेल्दी, दौलतमंद, लेकिन इमारत लीडरशिप को कहते हैं, उसी से है ये लफ्ज। और अमर अरबी में तीन किस्म का होता है, हुक्म का मानी सबसे पहले, और थोड़ा सा रिकमेंडेशन ली के मानों में। तो क्या पता चला? वामुर अहलक बिस्सला। अब इस वक्त मेरी नजर घर के मर्द साहिबान पे है, और उन्हीं के अंदर रहते हुए फिर माँ पे भी, यानी बाप और माँ। अब आप उसमें दादा और दादी को शामिल करें, बिल्कुल करिए, आप घर के अंदर बुजुर्ग हैं उनको कीजिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इस एक आयत में घर के बड़ों को, जो बालिग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनको चंद हुक्म दिए हैं। और वो क्या है कि आपको अपने अहलोयाल को नमाज की तलकीन करनी है। वामुर अहलक बिस्सला। अब आप कहते हैं हुक्म देना, डंडा पकड़ लो, ये करो, उठो नमाज पढ़ो। और हम इतनी सख्त जुबानों से बोलते हैं, मुझे बोलना भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं रुक गई। हमारे दिल में इस तरह के ख्याल आने लग जाते हैं कि अच्छा जी ये है वो है। देखिए, छोटे बच्चों से जब वामुर अहलक बिस्सला करेंगे ना, न्यू कमर, बिल्कुल इस तरह से कि जिसको आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चों को अगर आप इन चीज़ों पे लेके चलते हैं ना, तो उसमें लाड प्यार लिखिएगा इस बात को। हम में से बहुत सारे पेरेंट्स ये शिकवा करते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, और बच्चों को जब भी कहा गुस्सा करते हैं, और ख़ासतौर पर यहाँ नमाज की बात है, तो रमज़ान में तो नमाज़ों की फिर अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो याद रखिए कि जब नया नया दीन सिखाएं बच्चों को, तो उनको लाड में सिखाएं, प्यार में सिखाएं, मोहब्बत से सिखाएं, और जब वो सीख जाएं, कुछ समझ जाएं, कुछ उनको समझ आने लग जाए, तो उसके बाद फिर जरा जरा सी अमर की कैफियत हो। पहले लाड और प्यार, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तरबियत, डिसिप्लिन, और उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ उनकी तरबियत की जाए। हम अपने बच्चों को जब दीन सिखाते हुए सख्त जुबानें इस्तेमाल करते हैं, तो होता क्या है कि एक तो दीन के हुक्म उनके लिए नए होते हैं, और दूसरी बात, हमारी टोन बड़ी सख्त होती है। अक्सर घर वालों ने ये चीज़ नोट की होगी कि शुरू में, यानी इब्तदाई कैरियर में, 6, 7, 8, 9 साल की उम्र में बच्चे बहुत सुनते हैं, नमाज भी पढ़ेंगे, बच्चियां भी हिजाब ले लेके फिरेंगी, और माँ बाप बड़े खुश होते हैं। और ये वो पेरेंट्स हैं जो माशाल्लाह आप लोगों की तरफ बहुत ही बाशऊर पेरेंट्स हैं, और जिनको हर वक्त गम है, तो अपनी औलादों के बिगाड़ का गम है कि अल्लाह ये इस दुनिया के मेले में कहीं बह ना जाए। तो याद रखिएगा कि इस उम्र में जो बच्चे दीन पे आए, लेकिन जूं ही जरा सी उम्र आगे आई, यानी 11, 12, 13 साल, प्यूबर्टी के एज, बलूगत के पास, तो अक्सर बच्चे सरकशी करने लगते हैं, और माँ बाप परेशान, देखो पहले ये नमाज खुद पढ़ता था, मुझे कहना पड़ता, छोटी थी तो हिजाब लेती थी, अब नहीं ले रही। कभी हुआ आपके साथ ये इशू हुआ? तो उसकी वजह नोट कीजिएगा। एक तो कच्चे पौधे पे, जब कच्चे पौधे के ऊपर ज्यादा ही फल लग जाता है ना, तो वो भी टूट जाता है पौधा। दूसरी बात यह है कि माँ बाप ऐसे, और मैं माओं की टोन सुनती हूँ, मुझे खुद माएँ अपने मसाइल बताते हुए जब वो टोन इस्तेमाल करती हैं, तो हैरत होने लग जाती है कि इस टोन में तो अगर ये मुझे भी कुछ कहती तो मैं भी ना मानती। और जब माएँ कुरान पढ़ती हैं, ख़ास तौर पे आप जैसी खूबसूरत माएँ, तो फिर तो कुछ और भी बच्चों के लिए सख्त माँ का एक अंदाज इख्तियार करती हैं। तो ऐसा ना कीजिए। एक बात मैं आज आपको पता है कि दूं, कहीं मुझे डर ये है कि आज का टॉपिक पेरेंटिंग पे ना चला जाए, और है वैसे ये पेरेंटिंग पे, क्योंकि घर वालों में एक तो मसला बच्चे ही हैं, और अगर बच्चे सुन रहे हैं तो उनके लिए भी खुशी का मौका होगा कि पहली दफा कोई आंटी है जिन्होंने हमारा दर्द बांटा है। वाकई माई मॉम इज वेरी स्ट्रिक्ट, बच्चे कहते हैं, और फिर चिढ़ा जाती है। नहीं, देखिए जो काम आप लोग करेंगे ना, अल्लाह ताला आपके बच्चों से कराएगा। आप एक बेहतरीन रोल मॉडल हैं। अभी इंशाल्लाह हम कुछ टिप्स लेने वाले हैं, आज तकरीबन हम 20 टिप्स लेंगे कि क्या करें क्या ना करें, तो उसमें इस पे डिटेल से बात होगी। अभी सिर्फ इतनी सी बात समझिए, एक माँ चाय भी पिलाए, ब्रेड टोस्ट भी खिलाए, तो कितने प्यार से, आ जाओ मेरे बच्चे, नाश्ता कर लो। और वो बच्चा जिसको शुरू से लेके 4-5 साल की उम्र का होने तक हमने बेबी ही बनाया होता है, उसके लाड, उसका प्यार, उससे मोहब्बत, उससे बहुत ही उल्फत का तसव्वुर आता है। लेकिन जो ही हम उनको तरबियत के मराहिल में लाएं, और ख़ास तौर पे फिर दीनी तरबियत, तो हम सख्त होने लगते हैं। नहीं, वाह मुराहलक बिस्सलाह, मर्द को हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे बलूगत की उम्र के करीब पहुंच जाएं, और हदीस में जो उम्र है वो 7 साल है, तो उनको नमाज का हुक्म दो, और जब वो नमाज के थोड़े आदी हो जाएं, कुछ पढ़ी कभी, और तुम्हें भी तो देख रहे हैं ना वो, तो 10 साल की उम्र का होने तक आदत हो जाएगी। ये है ग्रेजुअलिटी, ये है हमारे दीन का हुसन। आप 70-80 की स्पीड में चलती गाड़ी को हैंड ब्रेक लगाएं, वो उलट जाएगी। स्लो करते हैं ना, गाड़ी को रोकने से पहले स्लो करते हैं। तबलीग में भी यही अंदाज रखिए कि अपने बच्चों को 7 से 10 साल के बीच में ये हुक्म करना है। यानी सवाल लिखिए ना कि कब करना है ये हुक्म। पहली बात है कि अगर मर्द है तो बीवी को अहलिया में लीजिए, क्योंकि आगे अगला लफ्ज़ देख लीजिए अहल का, और अहल में अहलो अयाल दो लफ्ज़ आते हैं। अगर सीधी सी बात बताऊँ ना, तो यहाँ अहल से मुराद बीवी ही है। और जाहिर है कि बीवी के लिए मर्द और मर्द के लिए बीवी, ये दोनों गाड़ी के दो पहिए, तो थोड़ी सी बात शोहर बीवी के ताल्लुक पे भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक ये दोनों गाड़ी के पहिए बराबर के नहीं होंगे, गाड़ी कैसे चलेगी? आज हम बात करें कि हमने अपने घरों के अंदर इस तरह का माहौल बनाना है कि रमज़ान जो है ये बच्चों के लिए फन टाइम बन जाए, बीवी के लिए खुशी का वक्त, शौहर के ये जिंदगी का सबसे पहला रमज़ान है जिसमें मैंने अपनी बीवी और अपने बच्चों को एंजॉय किया। पहले तो आते और जाते में बस वक्त गुजर जाता था, और ऐन मगरिब की अजान से पहले घर में आता था, और कभी खजूर खाई, नमाज पढ़ी, और फिर कहीं से फोन आ गया तो उधर चला गया। नहीं, ये रमज़ान बच्चों के साथ, बीवी के साथ। अल्लाह करे कि ये लॉकडाउन खत्म हो जाए। वो लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह जो कोरोना वायरस की वजह से है, लेकिन आप खुद को लॉकडाउन कीजिए। मैंने घर से बाहर सिर्फ जरूरत के लिए निकलना है, अगर इसके माश के लिए निकलना है तो बिल्कुल जरूरत की हद तक, और मस्जिद में जाना है तो बच्चों को बीवी को साथ लेना है, बाकी वक्त हम साथ गुजारेंगे। मर्द के लिए क्या हुक्म है? नंबर एक, अपनी बीवी की नमाज और उसके शरई हाल हुलिये और उसकी अदब अदाब का ख्याल रखें। मर्द अपनी बीवी से पूछे कि बेगम आपने नमाज पढ़ी है? फजर के वक्त तो जाहिर है कि वो खुद ही साथ उसको उठाएगा, और अल्लाह के नबी ने उस जोड़े के लिए बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ बोले हैं कपल के लिए कि जो एक दूसरे को रात में इबादत के लिए उठाते हैं। तहज्जुद से ही एक मियाँ बीवी का ये ताल्लुक शुरू हो जाता है कि चलो पहले तुम उठो फिर तुम उठो, और उस वक्त हम इतने फैयाज होते हैं। और शुक्र करिए घर में बाथरूम ही एक है। नहीं, पहले आप जाइए, क्योंकि मैं अच्छी बीवी हूँ, मैं आपको टर्न देती हूँ, और दुआ करते हैं लकड़े देर ही लगा कर आए और मैं कुछ वक्त सो जाऊँ। चलिए ये लाड कीजिए। अब शौहर साहब उठ नहीं रहे, बेगम के बारे में क्या हुक्म है? कहा कि वो जोड़ा कितना प्यारा है कि उनमें से कोई एक दूसरे को उठाने की कोशिश करता है, और अगर वो नहीं उठता तो उसके ऊपर पानी का छींटा लगाता है। अब जरा रुकिए इधर, ये आप आज रात तजुर्बा ना कीजिएगा, बड़ी लड़ाई हो जाएगी घर में। लिखिए एक जुमला, रात की इबादत यानी तहज्जुद है, क़याम है, फजर का वक्त है, कोई भी अपने अपने लेवल पे ले लीजिए, इस पे ये लाड वही शौहर बीवी एक दूसरे के बर्दाश्त करेंगे जो सुबह फजर से लेकर बाकी दिन की पिछली नमाजें साथ पढ़ चुके थे, और वो साथ ही कह चुके थे एक दूसरे को जो अब आपने कहने अपने शौहर से। आपके पास अभी भी चंद दिन है रमजान के आने तक, अपने शौहर के साथ बहुत प्यारी काउंसलिंग कीजिए, और आप अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी काउंसलिंग कीजिए। अच्छे से मज़े के कोई भी ऐसे खूबसूरत माहौल में बैठकर चाय का कप ले लीजिए, स्मूदी लीजिए, जिसमें आप दोनों एंजॉय करें। आप देखिए कि बाज़ दफ़ा शौहर बीवी जो हैं बहुत बोरिंग हो जाते हैं शादी के कुछ साल के बाद, क्योंकि शादी के शुरू में इतने लाड़ चाव की और ये सफ़र की और उधर गए और क्या लाड़ देके, उसके बाद बोर हो जाते हैं, और बच्चे आ गए तो समझो बस हर वक्त घर में खपाई लगी रहेगी, इसने ये किया वो किया। नहीं, आपका अपना भी दिन रात में कोई ऐसा वक्त जरूर होना चाहिए जिसमें आप एक दूसरे की इस्लाह और तरबियत की कोशिश करें। तो फर्स्ट थिंग अपने लिए लिखिए, आप शोहर हैं तो बीवी और बीवी है तो शोहर, इस साल रमज़ान में आप दोनों ने मिलकर क्या इबादत करनी है, क्या खैर लेनी देनी है इस पे निगोशिएट कीजिए। मसलन पांच नमाजें जमात से होंगी, घर में मर्द है जब तो फिर तो मर्द ही पढ़ाएंगे, बाप पढ़ाएगा, बच्चे उसके साथ होंगे और बीवी और बेटियां पीछे होंगी। ये जमात की नमाज का तरीका है, आप जानते ही हैं, अपने अपने हालात पे कयास कीजिए। अगर घर में एक ही मर्द है तो वो आगे खड़ा होगा, पीछे औरतें हो जाएंगी, बच्चियां भी उनके साथ आ जाएंगी, 7 साल से छोटे बच्चे भी औरतों में आ सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब बड़े होते जाएं तो इसी तरह से सफ बंदी होगी। तो आप नियत कीजिए कि बेगम इस पूरे महीने में हम सारी नमाजें जमात से पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग। आप बीवी पढ़ेगी, मियाँ भी पढ़ेगा, तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से आप दोनों मियाँ बीवी बैठकर कुछ नियत कीजिए कि हम आखिरी 10 सूरतें हिफ्ज करेंगे। तीन तीन दिन लगाकर 30 दिन में हम 10 सूरतें हिफ्ज कर लेते हैं। फिर आप एक ये नियत कर सकते हैं कि हमने पूरे महीने में झगड़ा नहीं करना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा तुम रोजे से हो और कोई तुम आपसे झगड़ना चाहे तो आगे से कह दीजिए निसाइमुन, यानी रमजान के बाद देखेंगे जो होगा। आप कहेंगे नहीं रोजा खोल के लड़ लेंगे, हिम्मत ही नहीं होगी आप में लड़ने की इंशाल्लाह, अगर आपने अच्छा सा रोजा रखा, ठीक है। तो शोहर बीवी एक प्लानर बनाए और उस प्लानर में फिर बच्चों को भी शामिल करें। आप नियत कीजिए, इरादा कीजिए, मसलन कि हम कुरान पाक पढ़ेंगे, फातिहा से नास का सफर अल्लाह हमारा पूरा करवाए। नियत कीजिए हम दोनों बैठ के सुनेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे, किसी का सुन ले, मियाँ साहब को जिसकी बात जो समझ आती है वो उनको सुने, बेगम आप जिसको उनको समझ आता सुने। शौहर अपने लैपटॉप पे अपनी पसंद से किसी और साहेब को सुन सकते हैं जिनका दौरे कुरान उनको समझ में आता है, लेकिन उस वक्त कर रहे सब एक ही काम हो, मुसहफ खोल के, ठीक है। फिर इसी तरह से बहुत सारी चीजें वाम और अहलका में शौहर बीवी के नाते से आ गई, लेकिन याद रखिए कि मर्द बीवी पर सख्ती भी कर सकता है, लेकिन शर्त एक है कि वो इससे अलावा उसको बड़ा प्यार और मोहब्बत दे चुका है। और याद रखिए कौन सा मर्द अपनी बीवी की नमाजों का हाल पूछेगा जो खुद 5 वक्त का नमाजी होगा। तो फिर नियत कीजिए अपने बारे में, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, मोमिनो अपने आप को और अपने अहलोयाल को जहन्नम की आग से बचा लो। सूरह तहरीम की आखिर की आयात है और ये आयात आपको मुझे ये बताती हैं कि पहले अपनी फिक्र करो फिर दूसरों की करो। जहाज में कहते हैं ना कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, और अगर किसी वक्त ऑक्सीजन मास्क आपके सामने गिरे तो पहले अपना लगा लें फिर अपने साथ वालों की मदद करें। तो क्या बात का खुलासा है, वापिस आ जाइए सूरह तौहा पे कि पहले खुद अपनी फिक्र फिर बीवी की फिक्र। मर्द का इख्तियार बीवी पे ज्यादा है, तो मर्द बीवी को देखता है, मसलन नमाज की आती नहीं, शादी हो गई, पहली तो बात है अम्मा ने ऐसी लड़की क्यों ढूंढी जो नमाज नहीं पढ़ती, और आपने क्या सोच के हाँ कर दी। शादी से पहले ये बात विद सिग्नेचर्स होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए कि ये लड़की 5 वक्त की नमाजी है और ये लड़का जिससे निकाह हो रहा है ये 5 वक्त का नमाजी है। यकीन कीजिए ये होगा होम स्वीट होम का तसव्वुर, ये है हैप्पी फैमिली। हमारी माओं को हक ही नहीं अपने बेटों की शादियां करने का और उनके सर पे सेरे बांधने का और किसी बेचारी नमाजी लड़की को परेशान करने का कि जिसका बेटा अभी 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ता। ये तो बुनियादी तरबियत है, और मुझे उम्मीद है कि आप एक नस्ल जो चल पड़ी, आज का पेरेंट्स यानी जो इस वक्त एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को पाल रहे हैं वो इंशाल्लाह अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे, ये मेरा गुमान है क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों के बीच में रहती हूँ। लेकिन बहरहाल अपनी नमाज फिर बीवी की नमाज। अब आप एक सवाल मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि अच्छा जी मर्द तो जिम्मेदारी ले कि जी बीवी नमाज पढ़े, अब वो नहीं पढ़ रही, क्या मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, आपने फजर नहीं पढ़ी, मैं अब कैसे खाना नहीं खाऊंगा, मैं भूखा चला जाऊंगा, मैं ऑफिस में जाके किसी और से खा लूंगा। देखिए हाँ अगले दिन फजर से पहले बीवी दुपट्टा सर पे लेके बैठी होगी। मगरिब के करीब मर्द घर में आते हैं, बेगम क्या पकाया है, नहीं बेगम जोहर असर मगरिब किधर गई, पढ़िए चलो लाओ बड़ी खुशबू आ रही है, मजे से खाना खाते हैं। ईशा की नमाज पढ़े बगैर बीवी लेटे सोए, मर्द कभी भी उसको अपने साथ बैठने का हक न दे। तो ये बातें सख्ती की नहीं है, ये वाह मुर जो है ना ये रवैयों से भी है, ये लाड भी है, ये प्यार भी है, मौका मिले तो कभी कभी खफकी का भी इजहार किया, लेकिन डांट गुस्सा जबरदस्ती नहीं होगी। बस बच्चियां उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं कहा होता, मर्द बहुत समझदार है, बीवी ऐसी मिल गई जो नमाज नहीं पढ़ती तो सब्र से प्यार से उसको एक्टिविटीज के तौर पर करें। अब ये बात तो हो गई, मुझे पहले ही पता था ये सवाल आएगा कि मर्द नहीं पढ़ता तो बीवी क्या करे। देखिए इस वक्त ना तो कोई फिक्का सेशन है, ना हमारा कोई इसमें क्यूए सेशन चल रहा है, बस इतनी बात याद रखिए, आपने ये गलती करनी ही नहीं अपनी बेटी की शादी करने के वक्त कि जिसके साथ शादी हो रही है वो नमाज नहीं पढ़ता। हमारे आज पेरेंटिंग स्टाइल में जो सबसे बड़ा नक्स है, पेरेंट्स खुद ही इम्बेलेंस है। आप एक गाड़ी लें, एक पहिया उसमें लगा दें ट्रक का और दूसरा पहिया लगा दें उसमें साइकिल का, चलेगी गाड़ी? ये है बेजोड़ शादियां। तो मेरा सवाल यही है फिर कि बीवी को शादी के बाद नहीं, शादी से पहले इस मसले को डिस्कस करना है। अल्लाह ताला आसान कर दे। और अब हो गई, अब क्या करें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जहनों में। तो फिर अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही प्यारे तरीके सिखाए, वो दुला सबीली रब्बी कबिल हिकमा। और नबी सल्लम की मिसालें तो देखिए, प्रॉफिट एट होम बुक पढ़ी है इंग्लिश की, अपनी बीवियों को किस तरह रغبत दिलाते थे। तो बीवी का प्यार, उसका अखलाक, उसका घर में अच्छे तरीके से रहना मशरूत हो जाए। और ये कब बातें करनी, उस वक्त नहीं जब फजर के लिए वो उठ नहीं रहे और आप उनके सर पे खड़ी हैं और रो रही हैं और धो रही, नहीं, ये होगा किसी खुशी के लम्हे में। मुझे आपसे एक बात करनी है, अभी कर लीजिए, चलिए रमजान में कर लीजिए, उससे पहले कर लें कि देखिए आप नमाज नहीं छोड़ेंगे। इसमें अब धमकियां देना दूना ये बहुत बेकार चीज होती है, बस अपने मूड से। बीवी दुखी रहे, क्या हो गया, मर्द खुद सोचेगा ये आज, पहले तो वो लगेगा ये परेशान है, दुखी है, दूसरी तरफ वो सोचेगा इसका मुंह बना हुआ है। कुछ ना कहें आप, पूछे क्या हुआ आपको, खैरियत? दो टप टप 500 गिराई है। मर्द परेशान होगा, मैंने तो कुछ कहा नहीं, इसको हुआ क्या? यकीन कीजिए बिस्सलात, अगला लफ्ज देख लें। अकलमंद मर्द, वाकई अगर आपके माँ बाप ने एक हीरा चुना है वो समझ जाएगा, ये मैं नमाज नहीं पढ़ी ना तो ये दुखी है। मुंह से नहीं बोलना, बनाइए ऑमलेट, बनाइए पराठा, बनाइए उनकी रोटी चावल सालन जो सुबह खाते हैं दीजिए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलना, दुखी दिखिए। उस बीवी को कोई जरूरत नहीं हंसने बोलने की जिसके शौहर ने फजर नहीं पढ़ी, जाने दीजिए ऐसे बगैर नमाज के, बस आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। कुछ दिन के खेल होंगे, वाकई अगर हकीकत में वो एक शरीफ ब्रदर हैं, और बहुत सारे मर्द शरीफ ही होते हैं अल्लाह की रहमत से, 2 4 दिन बाद कहेंगे भाई ये क्या घर में सुबह उठते ही परेशानी है, वो अल्लाह के लिए बाद में पढ़ेंगे, पहले 2 नफिल या 2 फर्ज बराए बेगम पढ़ लेंगे। ये है बीवी के मियाँ को नमाज पे लाने का तरीका। चलिए आगे चलते हैं। वामुर अहलक बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए। वस्तबिर अलैहा, इस पे आ जाइए आप। देखिए हम तो उर्दू में बोलते हैं सबर कीजिए उस पे, और तर्जुमा भी मैंने आपको यही बताया, तो सबर तो नहीं है इधर, तो तोय लगी हुई है, इस्तबरा लिखिए फर्क। सबर तो वही सबर है, ये तो आगे हम पढ़ते ही जाएंगे बहुत कुछ। सबर उर्दू में भी बोलते हैं, 4 किस्म का सबर अरबी में भी है, यहां तोय लगी हुई है, इस्तबरा। तो नोट कीजिएगा, ये सब्रे महज नहीं, ये है सब्र के साथ खुद भी उस काम पे जम जाओ, यानी इस पर कायम रहो। कैसे कायम रहेंगे आप? मकसद क्या है कि खुद भी इसकी पाबंदी करो। यहां आप सब्र से दो मानी मुराद हैं, दोनों लिख लीजिए। यहां इस तबरा से पहला मतलब यह है कि घर वालों को नमाज का हुक्म देने से पहले खुद भी तो उस पर जमी है, खुद भी तो उसके ऊपर आप पाबंदी कीजिए, तो यहां लफ्ज पाबंदी लिखिए। दूसरों को कहने वाला खुद भी पाबंद हो, एक मानी आ गया, ठीक है, मैं भी दोनों दोहरा दूंगी आपके लिए। पहला मानी क्या है कि आप दूसरों को कह रहे हैं तो खुद भी उसकी पाबंदी कीजिए, और दूसरा मानी अब लीजिए वस्तबरा के, जब आप दूसरों को नमाज की बात करेंगे तो वो बहुत बुरा बनाएंगे। लिखें, कुरान में भी हजरत शुएब की कौम ने तो ताना ही दे दिया था कि तेरी नमाजें तुझे ये हुक्म देती हैं, तो क्या हुआ कि जब आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देंगे ना तो वो बहुत माइंड करेंगे, गुस्सा भी करेंगे, सुबह सुबह घर में झगड़े की भी डर की उम्मीदें हैं, तो फिर इस पे सब्र कीजिए। ये भी एक मानी आता है किसी सेंस में आगे जाकर। तो क्या पता चला, वतवासो बिल हक की वतवासो बिल सब्र, ये भी वही चीज है। क्या पता चला कि रमजान में इंशाल्लाह हमने अपनी और अपने घर वालों की नमाजों की बहुत केयर करनी है। फर्ज पढ़ते हैं तो सुन्नतें भी पढ़नी है, सुन्नतों पे तो नवाफिल का एहतमाम करना है, और हर तरह की नमाज नियत कीजिए कि मैं एक तरह भी नहीं छोड़ूंगा, साथ मिलके पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ेंगे। और इसी तरह से प्लानर्स के साथ, जमात के साथ और इसी तरह से बाकी चीजें। दूसरी चीज देखिए, वस्तबिर अलैहा, उस पे जम गए, हो गई बात खत्म। आगे चलिए, ला नसलुका रिस्का, हम आपसे रोजी के खास कर तो देगी, हमने तो नहीं आपसे कभी कहा कि हमें खिलाएं। देखिए जो मुशरिकीन कल्चर है ना, उसमें अपने बुतों को और अपने बुजुर्गों को खिलाते थे, उनके नाम पे प्रसाद जाता है, उनके नाम पे नजरों न्याज होती थी। अल्लाह तो नहीं मांगता। मक्का वाले खाना काबा के पास अपने अपने बुतों के पास जाके रिस्क रखते थे, खाओ। अब वो कौन खाता था? प्रोखत खाते थे, उनके टेक केयरर्स खाते थे, आज भी ऐसे ही है। तो अल्लाह तआला कहते ला नसलु का रिस्कन, अगर तुम ये कहते हो कि मैं चूंकि कमाने जाता हूं तो अब मेरे पास नमाजें पढ़ने का वक्त नहीं, तो हमें तुमसे रोजी नहीं चाहिए, बल्कि नहन नरजुकुक, हम तुम्हें रोजी देते हैं, इसका जिम्मा तो हमने लिया। मतलब यह है कि काम पे जाने का नाम लेकर इस बहाने से नमाज नहीं छोड़नी।